जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद तो कल हम इस नवे अध्याय से प्रारंभ किए थे जिसमें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपना जो दूसरा उनका प्रयोजन था कैतव धर्म का खंडन करना, किस प्रकार से उन्होंने इसकी शुरुआत की और श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी सनातन शिक्षा में जब वो सनातन गोस्वामी को शिक्षाएं दे रहे थे तो उसमें उन्होंने एक सुंदर कथा द्वारा इसे समझाया। जब वो कह रहे थे कि एक ऐसा व्यक्ति था जो अपना धन भूल चुका था कि कहां पर था उसका, उसके पिताजी ने उसके लिए बहुत धन रखा था परंतु ये व्यक्ति जानता नहीं था कि कहां पर वो धन रखा हुआ है, इसलिए वो भ्रमण करते करते एक सर्वज्ञ जिसे ज्योतिषी भी कहते हैं, एक सर्वज्ञ से भेंट करता है और ये सर्वज्ञ इस व्यक्ति को बताता है कि कहां पर ये धन उपलब्ध है जो तुम भूल चुके हो और कहां पर तुम्हें नहीं जाना चाहिए इस धन को ढूंढते हुए। तो ये सर्वज्ञ इस व्यक्ति को कहते हैं, हरि बोल, इस व्यक्ति को कहते हैं कि सबसे पहले तुम्हें दक्षिण दिशा में इस धन को ढूंढने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यदि दक्षिण दिशा में जाओगे तो वहां पर बहुत जहरीले कीड़े हैं, अंग्रेजी में जिन्हें वास्प कहा जाता है, तैतिया, मधुमक्खी जैसे होते हैं सुनहरे रंग के, जो एक बार डस दे तो बहुत दर्द होता है। तो सर्वज्ञ ने इस व्यक्ति को कहा कि दक्षिण दिशा में जाकर इस धन की खोज मत करना, क्योंकि वहां पर ये जो तैती हैं ये काटेंगे। तो ये व्यक्ति पूछता है तो फिर मैं पश्चिम दिशा में जाऊं, तो कहा कि नहीं, पश्चिम दिशा में भी मत जाना, इन बच्चों को थोड़ा बिठा दीजिए, या तो आप बाहर जाइए या बैठिए। तो सर्वज्ञ ने कहा कि पश्चिम दिशा में यदि इस धन को ढूंढने जाओगे तो पश्चिम दिशा में एक यक्ष है और ये यक्ष जो है वो तुम्हें निगल लेगा। तो पश्चिम दिशा में यक्ष है, दक्षिण दिशा में ये तैतिया है और उत्तर दिशा में जब पूछा गया तो सर्वज्ञ ने कहा कि उत्तर दिशा में एक बहुत विशाल सर्प है, और ये सर्प भी यदि वहां पर जाओगे तो ये सर्प भी निगल लेगा। तो चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को इसके द्वारा बता रहे हैं कि ये जो तत्व ज्ञान भक्ति का, हमारी जो भक्ति है सुप्त अवस्था में जो हमारे हृदय में है, वो उस धन के समान है जो हम खो चुके हैं, और खो चुके हैं और भूल चुके हैं कि कहां पर हमने इस धन को रखा है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कहते हैं कि दक्षिण दिशा में जाओगे तो वहां पर कर्म कांड के ये कीड़े हैं, तेतिया, जो काटेंगे। तो दक्षिण दिशा में कर्म कांड है कि ये करो वो मिल जाएगा, ये व्रत करो ये तप करो, इस तीर्थान में जाओ तो तुम्हारी भौतिक इच्छाएं सारी पूरी हो जाएंगी, धनम देही पुत्रम देही जन्म देही, इसे कहते हैं कर्म कांड। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि दक्षिण दिशा में ये कर्म कांड है जो काटेगा, तो यहां पर ये धन उपलब्ध नहीं तुम्हारा, और पश्चिम दिशा में यहां पर ये यक्ष है, तो यक्ष की तुलना की गई है जो लोग ज्ञान योग के पथ पे रहते हैं और अपनी मानसिक कल्पना से वो परम सत्य को पकड़ना चाहते हैं, जिसे बाजी से तुम्हें निगल लेगा। तो अटकलबाजी से ये धन नहीं प्राप्त होने वाला, और उत्तर दिशा में ये सर्प है, तो सर्प की तुलना की गई है मायावाद से। तो जो योग सिद्धि से भगवान में एकाकार होना चाहते हैं, एकात्मता, तो इसकी तुलना उस सर्प से की गई है। तो फिर व्यक्ति जब सर्वज्ञ से पूछता है कि तो मैं कहां पर अपना धन खोजूं, तो सर्वज्ञ कहता है पूरब दिशा में। पूरब दिशा में केवल थोड़ा सा खोदने मात्र से तुम्हें तुम्हारा वास्तविक जो धन है वो मिल जाएगा। और श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव भी हुआ पूरब दिशा, गौड़ देश। तो इसीलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में गौड़ देश से उत्पन्न हुए, और उन्होंने जो हमारा खोया हुआ धन है सुप्त कृष्ण प्रेम, उसे पुनर्जागृत कर दिया है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ये सब प्रांतों में जा रहे थे, दक्षिण क्षेत्र में, पश्चिम, उत्तर, सब जगह पर जाकर चैतन्य महाप्रभु उस सर्वज्ञ की तरह सबको असली उनका जो खोया हुआ धन है उसका ज्ञान दे रहे थे। और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से श्रील प्रभुपाद जी तो भारत से बाहर सारे विश्व में उस सर्वज्ञ की तरह सबको ज्ञान दे रहे हैं कि खोया हुआ जो धन है ये कहां पर प्राप्त हो सकता है। तो कल हमने चर्चा की चैतन्य महाप्रभु जो अब निकले हैं गौरश्चक्रे विमुच्चैतान, अपने हाथ में वो चक्र लिए जो पाषंडी, कैतव, छल धर्म को नाश करने वाले हैं। तो चैतन्य महाप्रभु विभिन्न प्रांतों में गए, जैसे कल हमने चर्चा की गौतमी गंगा, मल्लिकार्जुन, अहोबलम, सिद्धवट, स्कंद क्षेत्र, त्रिमठ। तो जब चैतन्य महाप्रभु सिद्धवट में थे, जहां पर सीताराम और लक्ष्मण के बहुत सुंदर अर्च विग्रह थे, वहां पर चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन और नृत्य आदि किया, तो चैतन्य महाप्रभु वहां पर जब कीर्तन कर रहे थे तो तो सिद्धवट का एक ब्राह्मण, इस ब्राह्मण ने चैतन्य महाप्रभु को अपने घर पर प्रसाद के लिए बुलाया और चैतन्य महाप्रभु जब देखते थे कि कोई प्रामाणिक ब्राह्मण है तो चैतन्य महाप्रभु वहां पर उस निमंत्रण को स्वीकार करते थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु वहां पर गए तो चैतन्य महाप्रभु इस ब्राह्मण के विषय में क्या देखते हैं, इस ब्राह्मण के विषय में कहा गया है कि बहुत विशेष प्रकार का ब्राह्मण था जो प्रभु रामचंद्र जी का अनन्य भक्त था और इतना अनन्य भक्त था, कहा गया है सेवि प्र राम नाम निरंतर लय राम राम विना अन्य वाणी न कहय। ये विप्र जो था ये निरंतर केवल श्री राम का नाम लिया करता था। से विप्र राम नाम निरंतर लय राम राम विना अन्य वाणी न कहय। और राम वाणी के बिना और कुछ ये कहता भी नहीं था, बस केवल निरंतर के मुख से केवल राम 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 आता रहता था। जैसे कलयुग में निरंतर लोगों के मुख से काम 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 आता रहता है, यदि राम का नाम लेने बोलो तो काम बहुत है, इसके वजह से राम का नाम नहीं ले सकते। काम वासना भी बहुत है और काम भी बहुत है दोनों, परंतु ये विप्र निरंतर राम का नाम ले रहे थे। और चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए इस ब्राह्मण की इस नाम संकीर्तन को देखकर, और चैतन्य महाप्रभु वहां से चले गए और आगे वो संध क्षेत्र और त्रिमठ ये सब क्षेत्र में गए। उसके पश्चात फिर से चैतन्य महाप्रभु सिद्धवट में आए, और चैतन्य महाप्रभु सिद्धवट में इसलिए आए अब देखने के लिए कि ये जो ब्राह्मण जिसने मुझे बुलाया था अपने घर पर प्रसाद के लिए, ये ब्राह्मण अब इसका हाल क्या है। क्योंकि देखिए चैतन्य महाप्रभु जिस किसी से भी भेंट करते तो वो व्यक्ति साधारण नहीं रह जाता था, कुछ न कुछ उस व्यक्ति के अंदर बदलाव देखा जाता था। तो अब ये ब्राह्मण जो निरंतर राम का नाम लिया करता था, चैतन्य महाप्रभु देखना चाहते थे कि अब इसकी स्थिति क्या है। तो चैतन्य महाप्रभु जब फिर से इस ब्राह्मण से मिलते हैं तो चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं, पूर्वे तुम्ही निरंतर लयते राम नाम, एबे केने निरंतर लाओ कृष्ण नाम। पूर्वे तुम्ही निरंतर लेबे राम नाम, कि जब मैं पहले आया था तुम्हारे घर पर तो मैंने देखा कि तुम निरंतर केवल राम का नाम ले रहे थे, परंतु एवे केने निरंतर लाओ कृष्ण नाम। अब मैं क्या देख रहा हूं कि अब तुम्हारे मुख पर केवल कृष्ण का ही नाम आ रहा है। तो वो विप्र कहते हैं, विप्र बले ए तोमार दर्शन प्रभावे तोमा देखी गेला मोरे अजन्म स्वभावे। ये विप्र कहते हैं कि ये सब आपके कारण है हे प्रभु, जिस दिन आप मेरे घर पर आए, जिस दिन आपका दर्शन हुआ, जिस दिन आपने प्रसाद ग्रहण किया। विप्र बोले यही तुम्हारा दर्शन प्रभाव है, ये आपके दर्शन का प्रभाव है हे भगवान। तोमा देखी गेला मोर अजन्म स्वभावे, कि आपको देखने के पश्चात जो मेरा अजन्मा स्वभाव था, जो मैं जन्म से करते आ रहा था, और क्या करते आ रहा था, राम का नाम लेते आ रहा था, वो सब दूर चला गया, पता नहीं कहां पर, पता नहीं क्या हुआ कि अब मेरे मुख में केवल ये कृष्ण का ही नाम आ रहा है। तो फिर यहां पर कहते हैं, से है ते कृष्ण नाम जिह्वाते वसीला, कृष्ण नाम स्पुरे राम नाम दूरे गेला। कि उस दिन के पश्चात अब मेरी जो जिह्वा है मानो इस जिह्वा के ऊपर किसी ने कोई जादू कर दिया, मानो इस जिह्वा के ऊपर किसी ने कुछ जादू तोड़ा कर दिया है कि ये जिह्वा, पता नहीं मैं प्रयास करता हूं राम का नाम उच्चारण करने के लिए, परंतु ये जिह्वा केवल कृष्ण 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 यही नाम उच्चारण कर रही है जिह्वा, और राम नाम दूरे गेला, राम का जो नाम है वो पता नहीं कितनी दूर चला गया है अब मेरे जीवन से। तो ये अब अपने बचपन के विषय में कहते हैं, बाल्यकाल हैते मोर स्वभाव एक हय, नामेर महिमा शास्त्र करिए संचय। ये कहते हैं कि मैं बचपन से भगवान के नाम के चरित्र के विषय में संचय कर रहा था, मैं इकट्ठा कर रहा था शास्त्रों में कहां कहां भगवान के नाम की महिमा दी गई है। मैं बचपन से, जैसे बचपन में लोग खिलौना इकट्ठा करते हैं, तो ये विप्र, ये ब्राह्मण, इन्होंने कहा कि बचपन से मैं केवल क्या संचित कर रहा था, शास्त्रों में कहां पर भगवान नाम की महिमा दी गई है, केवल यही मैं संचित कर रहा था। इसीलिए वो ये श्लोक कहते हैं, रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानन्दे चिदात्मनि इति नाम पदेनासौ परम ब्रह्माभिधीयते। ये कहते हैं कि जो बड़े बड़े योगी हैं, जो बड़े बड़े योगी हैं वो भी आनंद की खोज में हैं, जिन्होंने सारा इस भौतिक संसार का आनंद इंद्रिय सुख त्याग दिया है, ये बड़े बड़े योगी, रमन्ते योगिनो अनन्ते, और किस प्रकार का आनंद की खोज ये कर रहे हैं, अनंत आनंद, कोई साधारण आनंद नहीं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी एक बार अपने एक प्रवचन में उन्होंने कहा कि जो भक्त होते हैं भगवान के, वो सबसे बड़े इंद्रिय भोगी होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सबसे बड़ी इंद्रियां किसकी हैं, और वो जानते हैं कि जो निरंतर आनंद, जो बिना किसी रोग के आनंद मिल सके, वो आनंद कहां पर प्राप्त हो सकता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि क्योंकि वो आध्यात्मिक आनंद की खोज में रहते हैं, इसलिए भक्त जो हैं वो सबसे बड़े इंद्रिय भोगी हैं। तो यहां पर ये विप्र, इन्होंने चैतन्य महाप्रभु को कहा कि मैं बचपन से प्रभु राम के नाम के विषय में इतना सब कुछ मैंने सुना था, रमन्ते योगिनो अनन्ते, जो बड़े बड़े योगी वो अनंत काल से भगवान श्री रामचंद्र के नाम का उच्चारण कर आनंद ले रहे उसमें अंदर, परंतु अब वो कहते हैं क्या, कृषिर भूवाचक शब्दो नश्च निवृत्ति वाचक तयोर ऐक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इति अभिधीयते। कि अब ये जो कृष्ण नाम है, ये जब से मेरे जीवन में आ गया है, तब से मुझे केवल शास्त्रों में वही बातें याद आ रही, शास्त्रों की जो मैंने पढ़ी थी ये कृष्ण नाम की महिमा के विषय में। और यहां पर श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद में लिखते हैं कि ये जो कृष्ण नाम है इसका अर्थ क्या है। कृष्ण कहते हैं जो भगवान की आकर्षण शक्ति है उसको कहते हैं कृष्ण, और ना कहते हैं भगवान की जो आनंद देने की शक्ति है उसको कहते हैं ना। तो कृष्णा, ये इसके अंदर भगवान की आकर्षण शक्ति और आनंद देने की शक्ति दोनों इसके अंदर है। जैसे एक बार राधानाथ महाराज बता रहे थे कि वो एक बार अमेरिका में वो प्रचार कर रहे थे, हरिनाम हुआ था और हरिनाम के पश्चात वो एक छोटा सा प्रवचन दे रहे थे, तो बाहर रास्ते में सड़क पर कुछ लोग इकट्ठा हुए थे और वो प्रवचन दे रहे थे उनको भगवान कृष्ण का गुणगान करते हुए, हरे कृष्ण महामंत्र का गुणगान करते हुए। तो कोई व्यक्ति जो कोई क्रिश्चियन था, वो व्यक्ति वहां पर खड़े सुन रहा था। तो व्यक्ति जैसे ही महाराज ने कुछ कृष्ण के विषय में कहा, तो ये व्यक्ति जोर से चिल्लाया कि ये सारे जो हरे कृष्णा वाले हैं, ये सभी नरक जाने वाले हैं, ये सभी नरक जाने वाले हैं, क्योंकि ये कृष्ण का नाम ले रहे हैं, ये कृष्ण जो कोई मन घड़ंत इनके देवता हैं, अपने मन में केवल कोई कृष्ण का इन्होंने कल्पना कर ली है, और सबको उनकी भाषा में वो लोग माया देवी को कहते हैं सेटन। तो इस व्यक्ति ने कहा कि ये सब वो सेटन के ही एजेंट हैं, माया के एजेंट हैं ये सब, इसलिए इनकी बात बिल्कुल मत सुनना, सब नरक जा रहे हैं। तो अब सब लोग, ज्यादातर जब ऐसे कुछ वाद विवाद होता है तो लोग ज्यादा अब उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हैं कि अब ये क्या कहेंगे, अब इसने ये कह दिया, ये कह रहा है कि ये लोग सब नरक जाएंगे, तो अब ये हरे कृष्णा वाले क्या कहेंगे अपने बचाव में। तो महाराज ने शुरू किया, सबसे पहले महाराज ने पूछा, आप कहां जा रहे हैं? मैं तो जा रहा हूं पैराडाइज, स्वर्ग। तो महाराज ने, फिर मुझे वहां पर तो नहीं आना कभी भी। यदि तुम जैसे वहां पर जा रहे हो तो वहां पर तो नहीं जाना। तो फिर महाराज ने पूछा इस व्यक्ति को कि मैं कुछ प्रश्न पूछता हूं, उसके उत्तर दो। तुमने कहा कि ये कृष्ण जो इन्होंने मन घड़ंत कोई देवता की कल्पना कर ली है, भगवान की कल्पना कर ली है, और उसकी आराधना ये लोग करते हैं। तो मैं बताता हूं कि जो कृष्ण ये जो शब्द है, ये संस्कृत का एक शब्द है, और ये जो संस्कृत का शब्द है कृष्ण, इसका अर्थ मैं बताता हूं अंग्रेजी में। तो महाराज ने कहा, कृष्ण का अर्थ होता है कि जो पूर्ण ऐश्वर्यशाली हो व्यक्ति, जिसके अंदर पूर्ण शक्ति हो, जिसके अंदर पूर्ण सुंदरता, पूर्ण ज्ञान, जो पूर्ण यशस्वी है, और जो सबसे प्रसिद्ध, पूर्ण प्रसिद्धि जिनके अंदर है। तो ये सारे गुण जिसके अंदर होते हैं पूर्णता, उस व्यक्ति को कहते हैं कृष्ण। तो अब महाराज ने इस व्यक्ति को पूछा कि क्या तुम्हारे भगवान पूर्ण यशस्वी हैं? तो सभी अब इसकी तरफ देखने लगे, बोलो बोलो। ये कहता है, हां क्यों नहीं, हमारे भगवान पूर्ण यशस्वी हैं। क्या तुम्हारे भगवान पूर्ण शक्तिशाली हैं? तो इसने कहा, हां अवश्य हैं। क्या तुम्हारे भगवान पूर्ण सुंदर हैं? तो इसने कहा, अवश्य है। क्या तुम्हारे भगवान सबके ज्ञाता हैं, वो सर्वज्ञ हैं? तो कहा, हां हां अवश्य है। तो फिर महाराज पूछते हैं, क्या तुम्हारे भगवान अब कृष्ण हैं? क्योंकि यदि अब वो कहता कि नहीं, तो महाराज ने क्या स्थापित कर दिया था कि ये सब जिसके अंदर गुण होते हैं उसको संस्कृत में कृष्ण कहते हैं, और यदि ये व्यक्ति कहे कि नहीं, तो मतलब इनके भगवान के अंदर ये सब गुण नहीं है, और यदि ये व्यक्ति कहे हां, तो भाई फिर, तो फिर वाद विवाद काहे का। तो जिसे कहते हैं चेकमेट, ये व्यक्ति चेकमेट हो गया कि समझ में नहीं आया अभी मैं हां बोलूं कि ना बोलूं। तो सभी पूछ रहे, बोलो तुम्हारे भगवान कृष्ण है कि नहीं है? तो ये कहा, मैं सोच के बताता हूं। तो यहां पर देखिए, ये जो भगवान का ये जो नाम है कृष्ण, एक भक्त बता रहे थे कि जैसे किसी एक व्यक्ति के बहुत से नाम होते हैं, कोई एक ऑफिस का नाम होता है और एक नाम होता है घर का, निकनेम जिसे कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं उसे, घर का नाम। तो किसी को घर पर पप्पू चिंटू ये सब बुलाते होंगे, परंतु ऑफिस में उसको कोई पप्पू नहीं बुलाएगा, चिंटू सर मॉर्निंग ऐसा कोई बोलेगा नहीं उसे। तो ये वक्त बता रहे थे कि कोई व्यक्ति यदि किसी भीड़ में खो गया है और यदि उसका ऑफिस का नाम आप पुकारो, सर सर बोलकर या ऐसा कुछ कर पुकारो उसको, तो हो सकता है कि वो ध्यान न दे, क्योंकि उस नाम के बहुत से व्यक्ति होंगे, परंतु उसका जो घर का नाम होगा वो घर का नाम उसका विशेष होगा केवल। और यदि उसके घर का नाम पुकारोगे तो चाहे कितने भी व्यक्तियों के बीच में वो हो, वो तुरंत अपने कान खड़े कर देखेगा कि अरे मेरा घर का नाम कौन जानता है और कौन मेरे घर के नाम से मुझे पुकार रहा है। तो कह रहे थे कि कृष्ण के बहुत से नाम है, परंतु ये जो नाम है कृष्ण ये उनका घर का नाम है वृंदावन का। इसलिए जब इनको कृष्ण कर हम पुकारते हैं तो तुरंत भगवान अपने कान खोलकर वो तुरंत ध्यान देते हैं कि कौन व्यक्ति मुझे कैसे पुकार रहा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। जैसे रूप गोस्वामी उन्होंने एक बहुत सुंदर पद में कहा है कि हे भगवान कृष्ण, आपका ये जो नाम है कृष्ण, ये जो दो अक्षर है कृष्ण, ये दो अक्षरों में पता नहीं आपने कितनी शक्ति कितनी मधुरता डाल दी है। रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब मैं इसका उच्चारण करना प्रारंभ करता हूं तो मैं इच्छा करता हूं कि मेरे सैकड़ों अरबों मेरी जिह्वा होनी चाहिए इसके जो उच्चारण मैं करता हूं, क्योंकि इतनी मधुरता है इसके अंदर। जैसे जब हमको कोई मधुर चीज अच्छी लगती है खानी, तो हमको भी ऐसा लगता है काश मेरी सैकड़ों जिह्वा होती ये हलवा खाने के लिए। परंतु रूप गोस्वामी कहते हैं कि भगवान आपका ये जो नाम है कृष्ण, इसका जब मैं उच्चारण करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि एक जिह्वा से मैं कितना उच्चारण कर पाऊंगा, कितना आस्वादन कर पाऊंगा केवल एक जिह्वा से। तो आपने मुझे केवल एक जिह्वा क्यों दी, बहुत सी जिह्वाएं दी होती। और फिर वो कहते हैं कि जब मैं इसका श्रवण करता हूं ये कृष्ण नाम का, तो केवल दो कान हैं, केवल दो कान हैं। और देखिए हमारे ये दो कान, उनमें भी कई बार अंदर जाते नहीं कृष्ण का नाम, कि कृष्ण के नाम के अलावा और सब कुछ अंदर जाता है। परंतु रूप गोस्वामी कहते हैं कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि आप मुझे सैकड़ों कान दो, ताकि आपका ये जो कृष्ण ये जो नाम है इसका मैं कुछ हद तक कुछ प्रतिशत इसका आस्वादन में कर सकूं। तो ये है भगवान का ये जो नाम है, इस नाम की महिमा यहां पर ये विप्र कह रहे हैं। एक हमारे प्रेरणा प्रोग्राम के पश्चात एक गेस्ट आए थे, तो राधानाथ महाराज से मिले और राधानाथ महाराज को आकर उन्होंने कहा स्वामी जी मेरा नाम कृष्णा रेड्डी, मतलब आप लोग सब कृष्ण की आराधना कर रहे हैं, मेरा भी नाम कृष्णा रेड्डी है। तो महाराज ने पूछा आर यू रेडी फॉर कृष्णा, तो उसने कहा नहीं वो तो अब तक मैं नहीं हुआ हूं, परंतु नाम मेरा कृष्णा रेड्डी है। तो यहां पर हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा चैतन्य महाप्रभु ने कुछ प्रचार नहीं किया इस व्यक्ति को, केवल इनके घर पर गए, दर्शन दिया, प्रसाद लिया और अपने आप ये विप्र, ये ब्राह्मण कृष्ण का नाम प्रारंभ करना शुरू कर दिया। एक बहुत ही सुंदर कथा है चैतन्य महाप्रभु की। इस कथा में दर्शाया गया है कि देखिए चैतन्य महाप्रभु कितने आतुर हैं हमें भगवान श्री कृष्ण का नाम देने के लिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु फिर से आए इस विप्र के घर में देखने के लिए कि मेरा जो प्रयोजन था क्या वो पूरा हुआ कि नहीं, क्या ये शुरू किया कि नहीं कृष्ण का नाम जप करना। तो फॉलोअप के लिए चैतन्य महाप्रभु वापस आए थे। तो ये कथा है, चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप से निकलकर जगन्नाथपुरी की तरफ आ रहे थे और कीर्तन करते हुए भगवान कृष्ण के प्रेम में भाव विभोर श्री चैतन्य महाप्रभु अब एक चीता के समान भागते जा रहे थे चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु ने रास्ते में देखा कि एक व्यक्ति, एक धोबी कपड़े धो रहा था। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु अब कृष्ण नाम में पूर्ण मग्न, जब उन्होंने देखा कि ये धोबी मनुष्य देह से मिला है, चैतन्य महाप्रभु देखते थे ये मनुष्य है और नाम नहीं ले रहा, इसका समय बीता जा रहा है और क्या कर रहा है, कपड़े धो रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु उसके उसके समक्ष गए, उसके निकट गए और कहा कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का नाम लो, कृष्ण 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 कहो। ये व्यक्ति कपड़े धोते धोते चैतन्य महाप्रभु को देखता और सोचता है कोई पागल व्यक्ति है लगता है, दूर दूर हटो, दूर हटो। तो चैतन्य महाप्रभु वहां पर जाकर आग्रह करने लगे, वो अपने घुटनों पर आ गए और आग्रह करने लगे कि कृपया एक बार कृष्ण का नाम लो। और ये व्यक्ति अब सोच रहा था कि पता नहीं कौन पागल व्यक्ति है, मैं इतना इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूं और बीच में आकर ये क्या, मतलब नहीं नहीं दूर हटो, समय नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु फिर से आग्रह करने लगे, नहीं कपड़े धो एक बार, कपड़े धोते धोते एक बार कृष्ण का नाम लो। तो इस व्यक्ति ने कहा कि अरे यहां पर मुझे ध्यान से कपड़े धोने पड़ते हैं, यदि एक भी दाग रह गया और तुम्हारे अनुसार यदि मैं ये नाम लूं और एक भी दाग रह गया तो फिर पैसा कहां से आएगा, और यदि पैसा नहीं होगा तो मेरा घर परिवार कैसे चलेगा, इस नाम से, नाम नहीं ले रहा था अब तक वो, इस नाम से जो कह रहे हो तुम। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा देखिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक धोबी के सामने जाकर घुटने टेक कर कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण का नाम लो, और ये व्यक्ति केवल अपने कपड़े धोने में लगा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा लाओ ये कपड़े मुझे दो, मैं धोता हूं, तुम्हें चिंता है कि ये कपड़े ठीक से धुलेंगे नहीं, मैं ये कपड़े धोता हूं, यहां पर बैठकर कृष्ण का नाम लो। इन्हें कहते हैं महावदन्याय अवतार, कि गोलोक वृंदावन से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नीचे आ रहे हैं किसी धोबी के कपड़े धोने के लिए ताकि वो भगवान का नाम ले सके। तो इसे लगा कि अच्छा बहाना है, मैं बहुत थका भी हूं, अच्छा बहाना है, थोड़ा थोड़े समय तक ये जो सन्यासी कह रहा है तो देखते हैं ये धोता है कि नहीं, और बैठकर मुझे तो केवल ये नाम लेना है। तो दे दिए भगवान को कपड़े, दे दिए धो इसे। तो चैतन्य महाप्रभु वो कपड़े धोने शुरू किए और कपड़े धोते धोते वो भगवान का नाम ले रहे हैं और इसको प्रेरित कर रहे हैं, लीजिए मेरे साथ कृष्ण का नाम लीजिए। तो ये भी बैठे बैठे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो एक बार लिया इसने, दो बार लिया, चैतन्य महाप्रभु धोए जा रहे हैं, कपड़े धोए जा रहे हैं, नाम लिए जा रहे हैं, और ये भी चैतन्य महाप्रभु के साथ बैठे बैठे नाम लिए जा रहा है, लिए जा रहा है, लिए जा रहा है। और एक समय ऐसा हुआ कि घंटों बीत गए और ये धोबी वहां पर बैठकर अब इतना भाव विभोर हो गया भगवान के नाम उच्चारण में कि इसने अपनी सारी सुध-बुध खो बैठी। और तब आई उसकी पत्नी, तब आई उसकी पत्नी भोजन लेकर कि ये सोचते हुए कि मेरे जो पति देव हैं वो पैसा कमा रहे हैं कपड़े धो धोकर, तो मैं थोड़ा भोजन खिलाऊं, लंच का टाइम हो गया। तो जैसे ही वो पत्नी आई तो देखा पति देव तो बैठकर हरे कृष्णा चल रहा है, और ये कपड़े किसके हाथ में है, एक सन्यासी, ये सन्यासी क्या कर रहा है कपड़े लेकर। तो बहुत उसे चिंता हुई, तो भोजन को वहां पर रखा और भागी और अपने पति को हिलाने के लिए, वो पति तो पूरा, वो धोबी तो पूरा कृष्ण प्रेम में था। तो पत्नी ने जैसे ही स्पर्श किया, अपने पति को स्पर्श किया हिलाने के लिए, तो जैसा करंट पास हो गया वैसे वो पत्नी भी शुरू हो गई। वो पत्नी भी वहां पर पति के बगल में बैठकर वो भोजन वहीं पर छोड़ दिया, और वो पत्नी भी बैठकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पत्नी वहां पर बैठ गई, पति पत्नी बैठकर घंटों अब केवल हरि नाम ले रहे हैं। अब बच्चे आ गए, बच्चे आ गए, बच्चों ने देखा कि आज माता पिता को क्या हो गया, पता नहीं कि वास्तविक रूप में आज वो असली चीज धो रहे थे, और वो था अपना हृदय। तो बच्चे, बच्चे आकर मां को हिला रहे हैं, एक बच्चा मां को हिला रहा है, एक बच्चा पिताजी को हिला रहा है, और दोनों ने जैसे स्पर्श किया माता पिता को, तो क्या हुआ उनके अंदर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो भी वहीं पर बैठकर वो भी हरिनाम उन्होंने प्रारंभ कर दिया। अब ये खबर फैली उनके गांव में, तो गांव में खबर फैली कि आज ये धोबी का परिवार बैठकर पता नहीं वहां पर किसका नाम ले रहा है। तो एक गांव वाला आया, दूसरा गांव वाला आया, सारे गांव वाले आकर देख रहे हैं कि पूरा परिवार आज क्या हो गया इनको। तो एक गांव वाला आकर उसने हिम्मत की स्पर्श करने की, उसे भी करंट लग गया। तो दूसरा गांव वाला आकर देखता है, वो उसका भाई था, बोला ये मेरा भाई, इसको क्या हो गया। तो वो आकर उसको टच करता है, वो भी हो गया। ऐसा पूरा गांव आ गया, और पूरा गांव अब एक दूसरे को स्पर्श कर चुका है, और स्पर्श करने मात्र से क्या हो रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। और चैतन्य महाप्रभु वहां से आगे निकल गए, पूरा गांव भगवान के हरि नाम में मग्न हो गया। और इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु सबको प्रेरित कर रहे थे हरि नाम लेने के लिए, जैसे इस विप्र को किया। एक हमारे इस्कॉन के भक्त हुए, मलेशिया के थे वो, उनका नाम था तुलसी माला दास। और भक्ति में आने से पहले वो एक गुंडों के गैंग के लीडर थे। तो वहां पर वो क्या किया करते, बंदूक की नोक पर बाजार में जाकर पैसे निकालो, हफ्ता निकालो, ये महीना निकालो, सब कुछ निकालो। तो बंदूक की नोक, और सब वहां पर थरथर कांपते थे, इनके नाम से थरथर कांपते थे। तो ये इनको एक प्रभुपाद जी की पुस्तक मिली, पाथ ऑफ परफेक्शन, और ये पुस्तक पढ़ने के बाद फिर ये बिल्कुल पूरा 360 डिग्री चेंज हो गया इनके जीवन में, और अब बंदूक के बजाय माला हाथ में आ गई। ये बंदूक जिसके विषय में हम चर्चा एक बार कर रहे थे, तो ये माला हाथ में, और अब वो प्रभुपाद की पुस्तकें ले जाकर उसी मार्केट में जहां पर वो बंदूक की नोक पर पैसा इकट्ठा किया करते थे, उन्हीं दुकानदार वही घरों में जाकर वो माला हाथ में लेकर, और जैसे वो जाते तो सभी तैयार, नहीं हम तैयार हैं, आपकी रकम तैयार है, कि नहीं ये पुस्तक लेनी, पुस्तक जो बोले वो लेंगे आप लाओ। इतना वो लोग डरते थे इस व्यक्ति से कि पुस्तक पुस्तक, वो कहा कि मंदिर के लिए कुछ डोनेशन चाहिए, ये लीजिए मंदिर के लिए, मंदिर के लिए, ये मंदिर के लिए कब से डोनेशन मांगने लगे। तो सब, और एक बार उन्होंने हिम्मत क्या की, पुलिस स्टेशन में गए प्रभुपाद की पुस्तकें लेकर, तो वहां पर तो पूरा एक शेल्फ था, पूरा एक शेल्फ उनके नाम का ही था, सारी फाइलें उनके नाम पर, जो जो वारंट निकला था तुरंत पुलिस ने पकड़ लिया, पुलिस ने पकड़ लिया और अंदर बंद कर दिया जेल में। तो जेल में बंद कर दिया, तो जेल में जितने सारे जो कैदी थे वो अपने आप को भाग्यवान मान रहे थे कि आज हमारे मध्य हमारे लीडर आए हैं, पहली बार पुलिस पकड़ पाई, क्योंकि वो स्वयं गए पुलिस स्टेशन में। तो वहां पर सबको हरिनाम में लगा दिया, वहां पर जितने भी कैदी थे उस जेल के सारे कैदी एक हफ्ते के अंतराल में हरिनाम प्रारंभ कर दिया उन्होंने। तो ये पुलिस वाले सब अब सोचने लगे ये क्या हो रहा है यहां पर, कि यहां पर ये लोग तो अपने आप को बहुत सुखी मान रहे हैं, जेल में दुखी होना चाहिए। तो वो पुलिस वाले बाहर दुखी थे और ये लोग इतना अंदर सुख से हरिनाम लिए जा रहे हैं। बोला कि भाई ये, तो उनके जो सुपरिंटेंडेंट थे वो आए, तो कहा कि ये व्यक्ति जो है ये व्यक्ति के वजह से हो रहा है, तो उठाकर उनको एक कोई द्वीप में कोई जेल था आइलैंड के ऊपर, उस आइलैंड के ऊपर उस जेल में डाल दिया। तो वहां पर जो कैदी थे वो सब काला पानी वाले, सजा भुगतने वाले, ये खूंखार इस प्रकार के कैदी थे। तो वहां पर उनको केवल कुछ ब्रेड दी जाती थी खाने के लिए दिन में, तो एक हफ्ता, बस एक हफ्ते में उन सबको भी प्रचार कर भक्त बना दिया, और जो भी ब्रेड उनको मिलती थी वो ब्रेड लाकर ये तुलसी माला प्रभु को लाकर देते थे, आपको आप क्या आप इसको भोग लगाते हैं, कुछ करते हैं भोग लगाइए। तो जेल के अंदर वो सब ब्रेड को भोग लगाते थे और फिर महाप्रसाद एक गोविंदे सब ब्रेड को बांटकर सब महाप्रसाद। तो सुपरिंटेंडेंट एक बार देखने आए तो वहां पर क्लास चल रही है जेल के अंदर और महाप्रसाद ब्रेड बांटा जा रहा है और हरिनाम हो रहा है। तो वो सुपरिंटेंडेंट इतना खुश हुआ ये सब देखकर, सुपरिंटेंडेंट का इसको निकालो बाहर, कोई जरूरत नहीं है, ये व्यक्ति बाहर के जो बड़े बड़े जो मुक्त घूम रहे हैं उनसे ज्यादा खुश, उनसे ज्यादा मुक्त और उनसे ज्यादा सज्जन है ये व्यक्ति। जैसे स्कॉटलैंड में एक घटना हुई गौर पूर्णिमा के एक दो दिन पहले, उन्होंने, जैसे आज का दिन है गौर पूर्णिमा के एक दिन पहले, उन्होंने इस देश में क्या किया कि पूरे देश में, ज्यादा बड़ा देश नहीं था वो, उस पूरे देश में सब जगह पर एक पोस्टर लगाया रात में, और वो पोस्टर था गौरांगा, बस उसके ऊपर गौरांगा लिखा हुआ सब जगह, और पूरे देश में सब जगह पर गौरांगा गौरांगा गौरांगा। तो सुबह लोग ऑफिस जा रहे हैं, कोई बस में बैठ रहा है, कोई ट्रेन में बैठ रहा है, कोई रास्ते पे चल रहा है, जहां पर भी देखता है गौरांगा गौरांगा गौरांगा, जहां कहीं पर भी देखता है गौरांगा, क्या है ये गौरांगा। तो अब सब लोग थोड़ा परेशान हो गए, पता नहीं क्या है ये गौरांगा गौरांगा। जैसे पहले वो बंबई में आया था, ऑरेंज 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 सब जगह पर, किसी को पता नहीं क्या है, संतरा बेच रहे हैं क्या कर रहे हैं लोग। तो यहां पर ये लोग थोड़ा परेशान हो गए, गौरांग क्या है ये गौरांग, तो पुलिस के पास गए कि हम परेशान हो गए, जहां पर भी जाते हैं गौरांग गौरांग। तो पुलिस ने फिर इन्वेस्टिगेशन किया और खोजबीन कर पता लगाया कि ये हरे कृष्णा केंद्र से आ रहा है। तो गए इस्कॉन के मंदिर में, और इस्कॉन के मंदिर में गए तो जिस दिन गए वो गौर पूर्णिमा का दिन था, तो गौर पूर्णिमा के दिन पहुंचे और वहां पर देखा कि सभी गौरांग अनिताय गौरांग उनका ही जप कर रहे हैं। तो पुलिस आके पूछता है कि ये गौरांग आपने लिखा? हाँ, आज उनका आविर्भाव दिवस है, आज उनका बर्थडे है, आइए अंदर। और पुलिस को भी सब लेकर वो लोग भी नृत्य शुरू किए, पुलिस वहां पर उनको प्रसाद दिया गया, और इस प्रकार से उन्होंने एक बार गौर पूर्णिमा का महोत्सव पूरा जो स्कॉटलैंड था वो पूरा स्कॉटलैंड गौरांगा गौरांगा का जप कर रहा था गौर पूर्णिमा के एक दिन पहले और गौर पूर्णिमा के दिन। तो हुआ ऐसा कि उस दिन एक व्यक्ति दूसरे देश का वहां पर आया हुआ था, न्यूजीलैंड का एक व्यक्ति, तो उसने देखा ये पूरे स्कॉटलैंड में खबर फैली है कि हरे कृष्ण वालों ने गौरांगा कर सब जगह पर प्रचार किया है, पता नहीं कौन है ये गौरांगा, क्या है गौरांगा, परंतु उसको वो शब्द बहुत अच्छा लगा, गौरांगा बहुत अच्छा लगा। और ये व्यक्ति न्यूजीलैंड में एक वीडियो पार्लर चलाता था जहां पर ये युवक जाकर खेलते हैं, वीडियो पार्लर, वीडियो गेम खेलते हैं। तो इस व्यक्ति ने एक नया वीडियो गेम निकाला जाने के बाद, और उस वीडियो गेम में था ऐसा कि आप एक गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी चलाते चलाते एक हरे कृष्णा के ऊपर से गाड़ी चला दो और तुरंत आपको एक पॉइंट मिलेगा और स्क्रीन के ऊपर आएगा गौरांगा जोर से लिखा हुआ, तो आपको एक पॉइंट मिला। तो जैसे स्क्रीन पे आएगा गौरांगा, आपको भी गौरांगा बोलना है और आपको एक पॉइंट मिलेगा। तो ये गेम, नया गेम कुछ बनाया ऐसा। तो वहां पर एक युवक था जो दिन के 8 घंटे उस वीडियो पार्लर में वीडियो गेम खेला करता था, 8 घंटे। तो ये व्यक्ति वो 8 साल से खेल रहा था, वो 16 साल का था जब वो 8 साल का था तब से खेल रहा था। तो उसने जब ये नया गेम देखा तो उसे ये गेम इतना अच्छा लगा कि वो 8 घंटे तक यही गेम को खेलता रहा रोज, और हर समय वो जब कोई पॉइंट जीतता तो गौरांगा चिल्लाता था जोर से गौरांगा। 3 वर्ष पश्चात उसका एक मित्र न्यूजीलैंड के इस्कॉन के मंदिर में ले गया। तो न्यूजीलैंड के जब इस्कॉन के मंदिर में वहां पर गया, देखा सब कुछ, क्या है ये मंदिर है क्या है, समझ में नहीं आ रहा था उसे। तो कीर्तन चल रहा था, सभी खड़े होकर नृत्य कर रहे थे, हरे कृष्ण का कीर्तन हो रहा था। तो इतना उसे कुछ प्रभावित नहीं किया वो कीर्तन उस समय, परंतु कीर्तन के अंत में वो कीर्तनकार ने शुरू किया निताय गौरांगा निताय गौरांगा, ये कीर्तन उसने सुना, ये कैसे जानता है, इसको कैसे पता, ये गेम तो खाली उसी वीडियो पार्लर में है और मैं ही खेलता हूं खाली। तो तुरंत वो कीर्तन खत्म होने के बाद उस व्यक्ति के पास जाता है, तुम्हें कैसे पता ये गौरांग गौरांग के विषय में। तो अब देखिए, कोई हरे कृष्ण भक्त से गौरांग के विषय में पूछ ले, तो फिर बिठाया, पूरा गीता कोर्स शुरू हो गया। और तब उसे पता लगा कि वो जो ये गेम खेला करता था और ये गौरांग जो आता था स्क्रीन पर और वो भी उसका उच्चारण किया करता था, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो कलयुग में अवतरित हुए हैं उनका नाम है। और अब आज वो हमारे एक सन्यासी हैं, देवामृत महाराज उनके शिष्य हैं, हम उनसे मिले थे अमेरिका में। तो ये है कृपा श्री गौरांग महाप्रभु की कि उनके नाम उच्चारण मात्र से उसे पता नहीं था कि इतने घंटों तक वो नाम उच्चारण कर रहा था तो क्या हो रहा था। जैसे ये विप्र, ये ब्राह्मण, इन्होंने कहा कि पता नहीं आपके संग में आने के पश्चात जो मेरा राम नाम था दूरे गेला, और मेरे जिह्वा पर अब केवल कृष्ण 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 यही नाम आ रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु फिर कुछ कहे नहीं, चैतन्य महाप्रभु केवल मुस्कुरा रहे थे और इतने आनंद में थे। तो चैतन्य महाप्रभु वहां पर उन्होंने इस विप्र के ऊपर ऐसी कृपा बरसाई कि इस विप्र से संबंधित, इस ब्राह्मण से संबंधित जो कोई वहां पर था वो सब भगवान श्री कृष्ण का नाम लेना प्रारंभ किए। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, गोसानीरा सौंदर्य देखी ताते प्रेमा वेशे, सबे कृष्ण कहे वैष्णव हैल सर्व देशे। चैतन्य महाप्रभु अब वहां पर नृत्य करना प्रारंभ किए और उनका सौंदर्य देखकर वहां के उस देश के सभी जो थे वो वैष्णव हो गए और वो सभी श्री कृष्ण का नाम लेना उन्होंने प्रारंभ किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमने सोचा कि क्योंकि ये जो हमने कथा सुनाई इसके अंदर भगवान श्री कृष्ण के नाम के विषय में इतना कुछ कहा गया है, तो हमने सोचा कि भगवान के इस नाम का गुणगान करते हुए एक बहुत सुंदर भजन है उसको हम गाएंगे। और आज हम थोड़ा जल्दी अंत करना चाहते हैं ताकि हम सब भगवान चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों जैसे तो नहीं है कि रात भर कृष्ण का नाम और उनका श्रवण कीर्तन करेंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि हम थोड़ा आज जल्दी विश्राम करें ताकि कल का जो इतना महत्वपूर्ण दिन है श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस, उसके लिए हम तैयार रहें, जगे रहें और पूरे दिन हमको भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का गुणगान और कृष्ण नाम इनका गुणगान करना है। तो ये भजन है, इसे कहा गया है हरेर नामाष्टकम, ये है 210 पेज पर आपके पास जो पुस्तिका है उसमें।